تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 234 سے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وشہرا. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے, تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے معاملے میں جو چاہیں وہ کریں. تم پر یعنی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. کن پر؟ ولی پر, جو گھر کے لوگ ہیں, جو عورت کے ولی یا اس کے وارث ہیں, ان کے اوپر کوئی پھر گناہ نہیں. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو جو تم دیکھ رہے ہو اس کو جانتا ہے. یہاں سے اب عدت کون سی؟ جو شوہر کی وفات کے بعد ہو. جب بھی کسی عورت کے ہسبینڈ کا انتقال ہوتا ہے, اور یہ عدت جو ہے یہ ہر طرح کی عورت کے لیے. نمبر ایک, وہ عورت جس کی شادی ہوئی, یعنی ہماری اصطلاح میں جس کو نکاح اور رخصتی دونوں کو جمع کر کے کہتے ہیں. دوسری, وہ عورت یا لڑکی جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. خدا نخواستہ رخصتی سے پہلے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے, اس کی بھی یہی عدت ہے. پھر تیسری بات, وہ عورت چاہے بوڑھی ہو یا جوان ہو, ہر حال میں بیوگی کی صورت میں عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. صرف ایک ایکسیپشن ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہ عورت پریگننٹ ہو. پریگننسی کی صورت میں عدت جو ہے وہ وضع حمل یعنی بچے کی ڈیلیوری تک ہوگی. وہ حکم سورۃ الطلاق جو 28 پارے میں آتی ہے, اس کی آیت نمبر 4 سے پتہ چلتا ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے. پیچھے بھی ہم نے طلاق کے تذکرے میں پڑھا کہ طلاق کی صورت میں بھی جب عدت گزارے گی عورت, تو وہ پریگننٹ ہوگی اگر, تو بچے کی پیدائش تک رکا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کس چیز سے رکے گی. یہاں اگر آپ آیت میں دیکھیں کہ یتربصن, ربص ربیسا کا لفظی معنی کیا دکھ رہا ہے ہمیں؟ اپنے آپ کو روکے رکھیں. کس چیز سے روکے رکھیں؟ نمبر ایک, دوسرے نکاح سے روکے رکھیں. دوسری بات, زینت سے روکے رکھیں. یہ چیز آپ کو اب پچھلی عدت سے مختلف دکھے گی. طلاق تک کی عدت میں کوئی بھی زیب و زینت کی پابندی نہیں تھی, لیکن بیوگی کی عدت کے اندر عورت زیب و زینت سے رکے گی. کوئی رنگدار کپڑے, اس قسم کے زیور, مہندی, سرما, خوشبو, خضاب, یعنی جس کو کوئی عورت آرائش کی نیت سے کرتی ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے, عورت کا دل بھی نہیں ہوتا, اور ایسی چیزیں کیوں منع ہے آپ پوچھ سکتے ہیں, ذہن میں سوال آتا ہے. پہلی بات, اللہ کا حکم. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. انسان جیسے کپڑے پہنتا ہے نا, اس کے جذبات ویسے ہی ہونے لگتے ہیں. عورتیں اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ جب وہ گندی مندی گھر کے عام کپڑوں میں ہوتی ہیں تو ان کے اندر وہ جذباتی رجحان نہیں ہوتا جو اچھے کپڑے پہن کے, سچ سنور کے, زیورات پہننے کے بعد ہوتا ہے. تب ایک عورت ہے, اس کا شوہر اس کے پاس نہیں, 4 ماہ 10 دن تک اس کو اپنے آپ کو روکنا ہے, تو بجائے اس کے کہ اچھے کپڑے پہنے, زیورات پہنے, پارٹیوں میں جائے, دعوتوں میں جائے, پھر اس کے بھی جذبات ابھریں گے, پھر وہ روئے گی, ہائے میرا شوہر نہیں, ہائے میں کس کو دکھاؤں, کس کے لیے پہنوں, تو کہا کہ تم پہنو ہی نہ, تاکہ تمہارا نفس مٹا رہے اور تم اس چیز سے اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالو. تیسری چیز جس سے عورت رکی رہے گی وہ ہے بلا ضرورت گھر سے نکلنا. حکم کیا ہے؟ کہ جہاں عورت شوہر کے ساتھ اس کی زندگی میں رہتی تھی اسی گھر میں رہے. خدا نخواستہ سفر یا ٹریولنگ کے دوران شوہر کا انتقال ہوتا ہے, تو پھر عورت کو گھر میں آنے کی مہلت دی جائے گی. مثلاً بعض لوگ ہوتے ہی ایروپلین میں ہیں, یا کوئی حج پہ گئے ہوئے ہیں, کوئی دوسرے شہر میں تھے, دوسرے ملک میں تھے, تو مطلقاً منع نہیں ہے نکلنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت بالکل نہ نکلے, اسی جگہ رہے جہاں نکلے نہ, لیکن یہ پابندی ہے, یہ غیر فطری بات ہے. عورت گھر سے نکل سکتی ہے ضرورت کے تحت. بیمار ہو گئی, کیا ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے؟ دکھائیں گے. اگر عورت کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی, جا سکتی ہے. ایون بیوگی کی عدت میں بھی عورت کو ضرورتاً گھر سے نکلنے کی اجازت ہے. ہاں, رات نہ گزارے باہر, کوشش پوری کرے. दूसरी बात यह है कि मसलन अगर एक औरत है, वो शौहर की ज़िंदगी में भी मस्जिद में जाती थी, जुमे की नमाज़ पढ़ने, खुतबा सुनती है, उसके दिल को अच्छा लगता है, कोई कुरान की क्लास लेती है या देती है, अब अगर ऐसी औरत को बेवगी के अंदर इन सारी चीज़ों से रोक दिया जाए, तो वो उसके ज़ख़म जो भरने थे उसको भरने में टाइम लगेगा। तो क्या है कोई ऐसी चीज़ जिसमें एक औरत अपने आप को बग़ैर आराइश किए, बग़ैर ज़िबाइश किए, नमूदो नुमाइश किसी किस्म के किए बग़ैर अगर औरत जाती है, ज़रूरतन निकल के जाए और वापस आ जाए रात को, असल चीज़ जो है वो इसमें ज़ेब व ज़ीनत का इजहार है। फिर इसमें एक सवाल ज़हनों में लोगों के उठता है कि जी क्या औरत जॉब कर सकती है, औरत बाहर जा सकती है, बच्चों को ला दे, तो ये देखिए कि सारी चीज़ें जो हैं फ़त्तकुल्लाह मस्तता तुम पे आती हैं। जितना जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा ना, वो उतना अल्लाह के हुक्मों को अच्छी तरह निभाएगी। अगर कोई औरत है वाकई उसको लगता है कि भाई मेरा कोई है ही नहीं कमाने वाला, बच्चे रो रहे हैं, हो सकता है वो घरों में काम करती थी, या जैसे अल्लाह के नबी के दौर में एक वाक्या हुआ कि एक औरत आई और कहने लगी कि मेरे शौहर ने तलाक़ दी लेकिन मैं फलां के बाग में जाके खजूरें तोड़ा करती थी, यानी मजदूरी करती थी, अब अगर मैं नहीं जाती तो मेरे बच्चों का कोई नहीं है, तो क्या मैं जा सकते हो, तो आपने उसको इजाज़त दे दी थी। तो लिहाजा इसमें जो बैलेंस राय है कि बिला ज़रूरत तो नहीं निकलना चाहिए, नंबर एक, और रात को अब इस बात से हुक्म लेके कहें चलो मेहंदी में भी चले जाएं, मुफ्तन में भी, बहुत लोग सवाल करते हैं वो मेरी बहन के बच्चे की शादी है, ये कोई मजबूरी नहीं, इसमें नहीं जाएगी औरत, क्योंकि फिर शादी में आप जाएंगे अगर आप फिर ऐसे ही उठ के चले जाते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स होगा कि हाय सारे इतने अच्छे कपड़ों में बैठे हुए हैं, मैं इतने बुरे हाल हुलिये में आ गई, और अगर आप बन ठन के जाते हैं तो मुश्किल है। एक ऐसी औरत को भी मैं जानती हूँ कि उनके बच्चे की शादी के दिन थे, दूसरे मुल्क से अपने मुल्क आई हुई थी शादी के लिए, और उसी दौरान शादी से कुछ दिन पहले शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब शौहर का इंतकाल हुआ, चलें भाई बाहर से आए हुए हैं, शादी फ़ौरन तो नहीं, एक महीने के बाद रखी गई, या तकरीबन कोई इससे कमोबेश वक्त हुआ होगा। फिर जब शादी का मौका आया तो लोगों ने उससे सभी कुछ कहा, कुछ नहीं होता, कोई नहीं, तुम तो ऐसे और तुम तो बूढ़ी थी, तुम ये थी, और उसको ना सिर्फ शादी में भी ले गए, फिर उसने जेवर भी पहन लिए, फिर कपड़े भी, और अमूमन हमारे यहाँ ये सब कुछ क्यों होता है, फिर खुशियाँ भी तो है ना, बच्चे को भी तो खुश करना है। तो एक जुमला याद कर लें, अल्लाह को खुश करके जिसको मर्ज़ी खुश करें, अल्लाह खुश सारे ही खुश, और अल्लाह को नाराज़ करके एक बंदे को भी आपने खुश किया तो अल्लाह आपसे खुश नहीं होगा। अल्लाह सुबहाना ताला ने ये चीज़ हमें बता दी। अब एक सवाल पैदा होता है कि 4 महीने क्यों, एक औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन क्यों रख दी, तलाक की सूरत में तो 3 थी, बेवगी की सूरत में 4 महीने 10 दिन। तो यहाँ से आपको अब हिकमत समझ में आएगी कि अल्लाह ताला ने फ़र्क क्यों रखा। पीछे हम इस पे बात कर चुके कि 3 महीने का वो वक्त होता है कि जिसमें बच्चा पेट में हिलजुल शुरू कर ही देता है, मूवमेंट होती है, लेकिन आप गौर करें कि तलाक की निस्बत बेवगी औरत के लिए ज़्यादा बड़ा सदमा होता है, गम होता है, क्योंकि तलाक में तो कुछ ना कुछ खटपट लगी होती है ना, पहले से कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होती हैं, औरत को लग रहा होता है कि मेरी अब तलाक होने वाली है या घर नहीं बनेगा, लेकिन शौहर की वफ़ात तो अचानक भी हो सकती है, हो सकता है वो दोनों बड़े अच्छे मूड में कहीं सफ़र पे ही हों तो शौहर की डेथ हो, तो बेवगी की सूरत में औरत को सदमा ज़्यादा होता है, तो अल्लाह ताला उसको इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग करते हैं, कोई बात नहीं मिल जाएगा, हो जाएगा, सब्र करो। तो 4 माह 10 दिन करके अल्लाह ताला ने इस मामले को आसान फरमा दिया कि कोई बात नहीं, इस दौरान औरत अपने आप को घर में रखे। फिर आप देखिए कि इस सदमे के बाद अगर एकदम दुनियादारी की तरफ लग जाए इंसान, तो बाज़ दफ़ा जो शख्स मरा होता है उसकी मौत से नसीहत नहीं ली जाती, बाज़ दफ़ा ऐसे हालात में उस मर्द की जो चीज़ें पीछे की छोड़ी हुई रखी हुई हैं उनको छोड़ के इंसान दूसरी सोच में लगता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ 4 माह 10 रखा। फिर भी अगर किसी को ये 4 माह 10 दिन मुश्किल लगते हैं, तो आज के सबक की आखिरी आयतों में हम देखेंगे कि इस्लाम से पहले इद्दत 1 साल की होती थी, वो क्या थी वो आपको उसी आयत के साथ लिखाती हूँ। तो कम अज़ कम वो बात सुन के ख़वातीन पर ये तो कह सकती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने इतनी नरमियों के साथ इतने आसानी के साथ 4 माह 10 दिन दे दिए। फिर उस दौरान आप देखिए कि औरतें अमूमन शौहरों को याद भी करती हैं, कुछ जिक्र भी करती हैं, अल्लाह को भी याद रखती हैं, ढारस होती है। फिर बाज़ दफ़ा हमारे कल्चर में तो आप देखिए कि लोग भी मिलने के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, पसंदीदा तरीका क्या है कि 3 दिन के बाद दूसरे लोग अफसोस के लिए ताज़ियत के लिए ना आए। लफ्ज़ अफसोस तो बोलना ही नहीं चाहिए, याद रखिए हम में से किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि अल्लाह के किसी फैसले पे अफसोस करे। मान लीजिए रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, जो मेरी तकदीर थी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन तक रखिए, आए मिलें, लोग ढारस दें, नई चोट पड़ती है, सदमा होता है, तकलीफ़ भी होती है, रिश्तेदार बहनें बेटियां घर वाले आए बैठे। 3रे दिन के बाद रुख्सत, खुदा हाफिज़। मैं एक ऐसी बेवा के हालात जानती हूँ कि जब उनके शौहर की सडन डेथ हुई, फिर उसके नाम पे बहनें सारी, ख़ानदान पूरा जमा घर में, अब 10 दिन तक वो पूरे जो करीबी रिश्तेदार थे वो उस घर में धरना मार के रहे। पूरा घर एक किस्म का शादी घर बना हुआ था। बेवा उसके बच्चों के सामने लोग आए तो रोने लग जाएं, थोड़ी देर बैठें तो कहीं पढ़ने पढ़ाने लग जाएं, और आम वक्तों में देखे तो कह कहे, हंसी मजाक, बाजार भी जा रहे हैं लोग, शादियों की बातें भी हो रही हैं। तो वो बेवा कहती थी कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन सबसे कहूँ ये जाए, मैं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि वो सडनली डेथ हुई हस्बैंड की। तो वो कहती थी कि मुझे उलझन आती इनकी बातों से इतने, और सिर्फ उनके जो बच्चों ने उन 10 दिन का घर का खर्चा बताया वो उस दौर में कई लाख था, जिसमें सिर्फ घर में डबल रोटी, अंडे, ब्रेड और खाने पके, हर एक नहीं अफोर्ड कर सकता। इस्लाम जो है वो हमें दुख सुख के भी तरीके सिखाता है, जीना मरना भी सिखाता है। आप देख रहे हैं कि कुरान के अंदर किस तरीके से लॉजिकली अल्लाह ताला हर उस मसले को ला रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। अफसोस की बात क्या है, जो हमारे दौर में आज मुसलमानों का मसला है वो क्या है कि वो इस कुरान को किताब हिदायत नहीं समझते, बरकत की किताब समझते, इससे गाइडेंस नहीं लेते। तो अब कुछ तो करना है, तो फिर कहते हैं जो मर गए तो बस आप उसके पीछे ये काम करते जाएं, वो करते जाएं, और बाज़ लोग इद्दत के नाम पे बहुत ही हल्के हैं। फिर आप देखिए कि इद्दत के दौरान औरत कोई जेवर नहीं पहनेगी, हल्का सा अगर नाक का कोई कील भी है अगर उसको भी उतार लेना चाहिए, क्यों कि अल्लाह का हुक्म है। हमारे यहाँ कुछ खुद साख्ता पाबंदियाँ भी देखी गई, मसलन कुछ खवातीन इद्दत के दौरान खूब तपाक से मर्दों से पर्दा करती हैं, इवन मैंने देखा है कि अपने महरम रिश्तेदारों के सामने नहीं आती, और वो क्या होता है भांजो भतीजों के सामने नहीं आती, क्योंकि ये औरत इद्दत में है, फिर इद्दत ख़त्म होगी तो फिर मिलेंगे, इस पे क्या हुक्म है। एक बात कहूँगी कि पर्दे का इद्दत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं कहती हूँ जितना पर्दा लोग इद्दत में करते हैं अगर पूरी ज़िंदगी में उसको अपना लें तो कितने बड़े मसले ख़त्म हो जाएँ। तो लिहाजा इसके लिए कोई अलग से हुक्म अहकामात हमें नहीं मिलते कि इस तरीके से अल्लाह ताला रखे इनको। फिर आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने ये जो पर्दे के इद्दत के मसाइल के अंदर ये जो कुछ पाबंदियाँ रखी हैं, तो ये औरत की रिस्पेक्ट को भी कायम किया गया है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी डिग्निटी, उसके राइट्स हैं। अल्लाह ताला उस औरत को मौका देता है, अगर कहा जाए चलो शौहर मर गए चलो अगले दिन जाओ काम करने शुरू करो, जाओ भागो बाज़ारों में जाओ काम करो। एक और भी वजह आपको समझ आती है कि बिला ज़रूरत औरत को घर से बाहर निकलने से मना इसलिए भी किया कि ना मर्दों की नज़रों में आए, ना दूसरों के सामने आए, क्योंकि अभी इस दौरान वो निकाह तौर करेगी नहीं, लिहाजा अगर कोई ऐसी बात उसके ऊपर आती है तो जिसकी वजह से उसको मुश्किल हो सकती है। तो कहा हाँ इद्दत ख़त्म हो गई, अब अगला मसला बड़ा अहम है, फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ी मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ। इद्दत ख़त्म, 4 माह 10 दिन ख़त्म, आप वो अपने मामले में क्या करती हैं, किस मामले में क्या करती हैं। नंबर एक, वो शौहर ही के घर में रहती हैं या वो छोड़ के मैके आ जाती हैं, भाई के पास चली जाती हैं, बेटे के पास जाती हैं, उनको इजाज़त है। दूसरी बात, फ़ी मफ़ाल न फ़ी अनफुसी इन्ना में है कि दोबारा शादी करती हैं या नहीं करती, ये भी ज़रूर उस औरत को इसकी इजाज़त है। फिर तीसरी बात है, वो आराइश करें, वो अच्छे कपड़े पहनें, वो घूमें, वो फिरें। अब जिसका शौहर मर गया है उस बेचारी को माइक्रोस्कोपिकली ना देखो कि उसके उठने को देखो, उसके बैठने को देखो। हमारे यहाँ एक और इंडियन कल्चर के साथ कुछ चीज़ें आ गईं, और वो क्या है कि जो औरत बेवा हो जाए अब कभी भी अच्छे कपड़े ना पहने। शादियों में भी उस गरीब को देखते हैं तो चाहते हैं कि वाइट कपड़ों में देखें, जेवर पहन ले तो कहते हैं किसको दिखा रही है। आप सोचिए जिनके शौहर है वो कितना शौहरों को दिखाने के लिए पहन रही हैं, वो भी तो दूसरों को दिखा रही हैं ना। तो लिहाजा ऐसे मामलात में औरत के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। हिंदुओं में जब कोई मर्द फौत होता है तो अमूमन औरतों को भी साथ सती कर दिया जाता है, वो मर जाती हैं, खुद ही आग में कूदती, क्यों कि उसके बाद उनके ऊपर इंतहाई पाबंदियाँ होती हैं, उनको मनहूस और डाइन कहा जाता है कि खा गई ये मर्द को और ये हो गई वो हो गई, किसी शादी में वो नहीं जा सकती, कोई रस्म में नहीं जा सकती, तो वो उससे पहले ही ख़त्म होती हैं। इंडिया में जब अंग्रेज़ों का राज था उन्होंने इस रस्म पे पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ आप देखते होंगे फिल्मों में कई लोग देखते हैं कि फिर शादी के बाद बेवगी के बाद वो हमेशा सिर्फ वाइट साड़ी पहनती हैं, इसीलिए उन्हीं से हमारे जहनों में भी ये कल्चर आ गया कि औरत वाइट कपड़ा ना पहने, और ये बेवगी का किसी रंग का किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो मर्ज़ी करें। कोई औरत कहती है मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, मेरे जज्बात ख़त्म हो गए, बच्चे हैं उनके साथ रहूँगी, ठीक है, वेल एंड गुड। हदीस में आता है कि जिसने अपने बच्चों को पालने के लिए जिस औरत ने कुर्बानी दी, अल्लाह ताला उसको भी इसका अजर देगा। ये तो बात है ना करने की, लेकिन कोई कहती नहीं मैं जवान हूँ, मुझे अभी लगता है कि मैं शादी कर सकती हूँ, दूसरी कर लेना बहुत ही पसंदीदा। उसके ऊपर भी हदीस आती है कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि तीन चीज़ों में देर ना करना। नंबर एक, जब कोई मर्द या औरत अकेला रह जाए, यानी पहले शादी थी, अय्यम बोलते हैं ऐसे मर्द और औरत को, कि उसके निकाह सानी में, दूसरे निकाह में देर ना करना, क्योंकि ऐसे लोगों को शैतान जल्दी ग्रैब करता है। और दूसरा, वो शख्स वो जिसके जो मर जाए तो उसके कफन दफन में, क्योंकि अगर नेक है तो तुम्हें कोई हक नहीं रहता है कि तुम उसे उसकी मंजिल से दूर करो, और बुरा है तो हो सकता है उसका अजाब तुम पे आए। और तीसरा, आपने फरमाया कि नमाज जब उसका वक्त हो जाए तो उसकी अदायगी में। तो बहरहाल ऐसी तमाम चीज़ों पे अल्लाह सुबहाना ताला ने एक रुख्सत दी। अब एक रियलिटी का तस्करा है आयत 235 में, क्योंकि औरत निकाह नहीं कर सकती, लेकिन किसी के जहन में आ तो सकता है ना कि हम इस औरत से करेंगे। जैसे कोई जवान लड़की होती है तो अक्सर लोग अपने घरों में बातें करते हैं ना, जब हम अपने बेटे की उससे कर लें, हम भाई की कर लें, या कोई मर्द भी सोच सकता है। तो अब एक औरत जब तन्हा रह गई, उसका शौहर नहीं है, तो ज़रूर ही ऐसी औरत का तस्करा हो सकता है। तो इसको भी अल्लाह ताला ने अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। फरमाया आयत नंबर 235 को देखिएगा, वला जुनाह अलैकुम फीमा अरदतुम बिही मिन खितबत निसाई। ज़माने इद्दत में ख्वाह तुम इन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे कनाए में ज़ाहिर कर दो या फिर अपने दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मुज़ायका नहीं। अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतस्कुरूनहुन्ना, अल्लाह ताला जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही। लिहाजा देखो, क्या गौर करने की बात क्या है, वलाकिल्लात वाईदुहुन्ना सिर्रन, मगर देखो खुफिया अहदों पे ईमान ना करना। हाँ मगर एक सूरत क्या है, इल्ला अन तकूलु क़ौलम मारूफा, अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीके से करो, नपे तुले अंदाज से करो, ढके छुपे अंदाज से करो। हाँ लेकिन वला ताज़ मुक़द्दतन निकाह है, और निकाह की गिरा बांधने का फ़ैसला ना करना, यानी निकाह से पहले की चीज़ों का अगर हुक्म नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो निकाह करने का कहाँ की इजाज़त कहाँ होगी। तो कहा निकाह ना करो किसी से उसकी इद्दत के दौरान, हत तयबलुगल किताब अजलहू, जब तक कि उसकी इद्दत अपनी मुद्दत को पूरी ना हो। यहाँ अल किताब अजल, इससे मुराद इद्दत है। वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अन्फुसिकुम, खूब समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है। लिहाजा फ़ख ज़रू वालम अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, लिहाजा उससे डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह ताला बुर्दबार है और छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। बहुत ही खूबसूरत आयत, और मैं जब भी कभी ऐसी आयतें पढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ कि जो लोग इनसे हिदायत नहीं ले रहे तो सिर्फ इनको ऐसे ही पढ़ रहे हैं। इतने खुले काम आते हैं जिसको इंसान मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए रखते हैं। आइए ज़रा इस आयत के जो मसाइल हैं उन पर एक एक करके बात करते हैं। पहली बात यह है कि औरत के साथ चूँकि निकाह में इद्दत में निकाह की इजाज़त नहीं, लेकिन अगर किसी मर्द के दिल में उस औरत का ख्याल आता है, और आ सकता है, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, और हर औरत जो बेवा होती है वो बूढ़ी नहीं होती, कुछ जवान होती हैं, कुछ बिल्कुल न्यूली मैरिड होती हैं, और कुछ बूढ़े लोगों के भी दिल में आ सकता है कि एक बूढ़ा मर्द है जिसकी पहले से बीवी फौत हो चुकी, अब उस सोसाइटी में किसी और के बारे में भी पता चला कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। बाज़ दफ़ा औरतें औरतों से बातें एक दूसरे को सुन पता चल जाती है, इस तरह की बातें वो करते हैं, तो फिर क्या किया जाएगा। इस सूरत में फरमाया कि दिल में ख्याल आ जाए इस पर गुनाह नहीं। देखिए अल्लाह ताला कितना इंसान की फितरत को सामने रख कर हुक्म देते हैं, कहा कि दिल में आ जाए ठीक है, इशारतन बात कर दी जा सकती है। मसलन ये कहा जा सकता है, अच्छा आप इस बेटी का या इस बहन का या इस औरत का कहीं निकाह करेंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई इशारतन कह सकते हैं, मैं भी आजकल निकाह की कोशिश में हूँ, मैं भी आजकल कोई नेक औरत ढूंढ रहा हूँ। कोई ऐसी ढकी छुपी बात जिससे औरत के वाली जो हैं, वली वारस हैं, उनको पता चल जाए कि कोई इंटरेस्टेड है, तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं। कभी ऐसा होता है कि अच्छा अगर हमने इद्दत में ना कहा तो हो सकता है इद्दत ख़त्म होते ही इसकी किसी और जगह हो जाए, तो ढकी चुकी बात करने में कोई हरज की बात नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे पता है कि तुम ऐसा तज़किरा करोगे, दिल में बातें आती हैं, तो लिहाजा छुपे हुए वादे ना करो। अब सवाल पैदा होता है कि इद्दत चल रही है, फिर क्या हुआ कि अगर उसके अंदर वादे शुरू हो गए, हत्ता कि किसी ने निकाह भी कर लिया, उसके बारे में क्या हुक्म है। यानी यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई औरत अभी इद्दत में ही थी, किसी दूसरे मर्द ने उससे निकाह कर लिया तो क्या होगा। पहली बात है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, बाज़ दफ़ा निकाह कर लिया जाता है, बाज़ दफ़ा ताल्लुक़ भी कायम हो जाता है, तो फिर क्या है इसके लिए हुक्म क्या है कि अगर किसी ने इद्दत में निकाह कर लिया तो फौरन उनको जुदा किया जाएगा, सेपरेशन कराई जाएगी, फिर उस औरत के इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाएगा। इद्दत के बाद अब क्या करना है इसके बारे में दो राय हैं स्कॉलर्स की। कुछ राय है स्कॉलर्स की कि अब उसका दोबारा निकाह करवा दो, क्योंकि अब कर तो चुके ही हैं तो दोबारा कर दो। और दूसरी राय क्या है कि कभी भी ना अब उनका निकाह करो। क्यों? कि उन्होंने अल्लाह की एक हद को तोड़ा, बेसब्री की लिमिट्स को क्रॉस किया, तो उनको सज़ा के तौर पर इस किस्म की बात जो है वो दी जा सकती है कि वो ऐसा काम ना करें। और आप देखिए कि बाज़ दफ़ा जब इंसान कुरान से दूर होते हैं तो फिर बहुत सारी कपाहतें आती हैं, कई कहानियाँ उठती हैं, और अल्लाह ताला माफ़ करे। पहली बात है कि ऐसी कभी कोई सोसाइटी में बात सुने तो इंटरेस्ट ना ले, क्योंकि ऐसी बातों में मर्च मसाले लगाकर बाज़ दफ़ा लोग इस किस्म की बातें कर देते हैं जो कि इंसान को नुकसान देती हैं। अल्लाह ताला इंसान को उसी बात से रोकते हैं जिसमें इंसान का बहुत बड़ा नुकसान है। फिर इसके बाद एक और चीज़ देख सकते हैं हम, और वो क्या है कि क्या बेवा औरत के निकाह के लिए भी बाप की इजाज़त की ज़रूरत है, भाई की या उसके वली की। तो इसके बारे में पहली बात तो ये है कि जिस तरह एक कुंवारी लड़की खुद अपनी शादी नहीं कर सकती, निकाह नहीं कर सकती, बेवा या मुतल्लिका भी अपनी शादी खुद नहीं कर सकती, क्योंकि स्टिल शी इज़ अ वुमेन, अभी भी वो एक औरत ही है, और औरत कमज़ोर होती है, औरत जज्बाती होती है, गलत फैसले करती है। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी रुख्सत क्या है कि शौहर दीदा औरत, शौहर दीदा समझिए कि जो एक दफ़ा शौहर देख चुकी है, अब मुतल्लिका है या वो विडो है, कंवारी लड़की की निस्बत थोड़ी ज़्यादा मुख्तार हो सकती है, खुद मुख्तार, यानी वो कह सकती है कि नहीं आप मेरा इधर ही करते हैं, मैं चाहती हूँ। वही बातें जो आज के दौर में कंवारी लड़कियों ने भी अपने हाथ में ले ली ना, कि बस अब कर दें, फोर्स करना जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं, राय देना कर दें, तो विडो करे तो फिर कर देनी चाहिए। लेकिन कुंवारी के बारे में तो हुक्म है, हदीस में आता है खुलासा कि पूछा गया कि अपनी लड़की से पूछ लो शादी करने से पहले कि वो इधर करना चाहती है कि नहीं, तो लोगों ने कहा कि वो तो नहीं बताएगी, वो तो बोलती नहीं, कुंवारियाँ तो बोलती नहीं है, यानी अनमेरिड लड़कियाँ, तो कहा अगर वो चुप कर गई तो भी इजाज़त है, समझ लो कि वो राज़ी है, और अगर रो पड़ी यानी माँ बाप से जुदाई का ख्याल उसको रुला देता है तो वो भी उसकी तरफ से एक इजाज़त ही है। हाँ अगर किसी को एतराज़ होगा तो वो खुल के कह देगा कि मुझे यहाँ नहीं करनी। तो बहरहाल थोड़ी सी इसमें रुख्सत मौजूद है। के वजह क्या है? आप कहें देखा ये तो बड़ी बुरी बात है, वजह बहुत बड़ी है, इसलिए कि एक औरत जो लड़की है अभी 16 से 18 20 22 साल की है, उसने भी दुनिया नहीं देखी, उसको नहीं पता कि हर खूबसूरत लड़का अच्छा शौहर हो सकता है कि नहीं, या उसको नहीं पता कि शादी के बाद की ज़िंदगी कितनी संजीदा ज़िंदगी होती है, कितनी रियलिटी उसमें आती है। बाहर से तो वही चीज़ें चमकती हुई दिखती हैं, घर में आए तो वो कहते हैं इतनी तो चमक नहीं थी। कभी आपने कोई ज्वेलरी खरीदी हो, आप कहते हैं हाय बहुत शाइनी है ले लो जल्दी से, कोई टॉप्स कोई बुंदे, जब आप घर आके देखते हैं हम कहते हैं वही है इतनी तो शाइन नहीं, फिर पता चलता है वहाँ लाइटें बहुत लगी हुई थी, ज्यूलर्स ने या जो भी दुकानों वाले उन्होंने सजाई थी, घर में उतनी लाइट नहीं है। इसी बात को याद रखिए, शादी से पहले वो लड़का जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है ना, वो हमें खूबसूरत तरीन लड़का लग रहा होता है सोसाइटी का, ऐसे लगता है इससे ज़्यादा केयरिंग कोई नहीं, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल रखने वाला नहीं, और मेरे हुसन की तो असल कदर की है तो इसी शख्स ने की है, और ये वैसा होगा नहीं। एक जुमला ज़िंदगी में याद रखिएगा कि इवन मंगेतर, मंगेतर में भी और मंगेतर और शौहर में भी बहुत फ़र्क होता है। हस्बैंड इज़ हस्बैंड, फियांसी इज़ फियांसी, तो कहाँ पे बॉयफ्रेंड जो अभी ना आपका फियांसी है ना हस्बैंड, आप उसको कैसे पहचानेंगे? जब आप छुरी हाथ में लेके काटना शुरू करते हैं फिर पता चलता है कितने कट लगते हैं। किसी को काटता देख के कहते हैं ये क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके, लेकिन आपको कह दिया जाए ना चले सर आप भी इस काट के दिखाएं, तो हो सकता है कि प्याज काटने के बजाय आप अपना हाथ काट लें। रियलिटी इज़ वेरी बिटर, जिसको कहते हैं अलहक मुर्रा। तो माँ बाप जो होते हैं वो लड़कियों के लिए अच्छे फैसले करते हैं, वो खुद भी इस मरहले से चुके गुजर चुके होते हैं, फिर उन्होंने दुनिया को देखा होता है। तो अगर किसी लड़की को लगे कि माँ बाप किसी जगह शादी करने में वाकई लॉजिकली गलत उस बात को कह रहे हैं कि सही नहीं, तो समझ जाना चाहिए कि ये हमारे दुश्मन नहीं, कोई 16 18 साल आपको पाले रखे सजाए खिलाए पिलाए और आज आप इतने खुद मुख्तार हो गए। मैं कहती हूँ सिर्फ ऐसी लड़कियों को कहा जाए ना कि यहाँ से लें 100 रुपया और जाके ज़रा सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेके आए, जो गली सड़ी सब्ज़ी उसको दे देगा वो लेके आ जाएंगी। आप 5 दालों के नाम पूछ लें यंग लड़कियों से, आपको आते हैं? जो लड़की दालों के नाम नहीं जानती, जिसको सब्ज़ी नहीं ख़रीदने आती, गोश्त नहीं पता, उसको मुख्तलिफ घरेलू चीज़ों का नहीं पता, वो एक लड़का कैसे पसंद कर सकती है? तो लिहाजा ये कि साइड पॉइंट मैंने कहा, इस पे बात जाके इंशाल्लाह सूरत निसा में डिटेल से होगी कि क्या औरत अपनी पसंद की शादी कर सकती है या लड़का कर सकता है। यहाँ चूँकि बेवगी के लिए बात हुई तो इसमें हल्की सी बात हुई। इसके बाद अगली आयत को देखते हैं, आयत नंबर 236। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुमुन्निसा मालम तमस्सूहुन्ना مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके के हाथ लगाने की नौबत आए, यानी रुख्सती नहीं हुई अभी तक, और या फिर मेहर मुकर्रर हो। इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक दे और गरीब अपनी कुदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे, ये हक है नेक लोगों पर। इस आयत में उसी बात को थोड़ा सा रिपीट किया गया जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं तलाक के ज़िमन में, और वो क्या है कि औरत को जब तलाक मिलती है, चाहे उसको उससे रुख्सती हुई कि नहीं हुई, मर्द जब उसको छोड़ता है कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचता ही है ना। देखिए एक लड़की ऐसी होती है बैठी हुई, उसकी वैल्यू और है, और पता चले इसकी पहले भी मंगनी हुई थी और टूट गई, थोड़ी सी डी वैल्यू होती है। और ख़ास तौर पे अगर एक औरत शौहर के घर से होके पलट आए, बाद दफ़ा एक हफ्ते में आ जाती हैं लड़कियाँ वापस, एक दिन के बाद भी आ सकती है, कुछ ना कुछ कमी हुई तो कहा कि फिर मत ऊ होना, कुछ फ़ायदा दो, ऐसे ही दे दो, कुछ कंपनसेशन करो। अब देखिए कि इंसानों की जगह नहीं लेता पैसा, लेकिन हकीकत है कि रुपए, पैसे, कपड़े, जेवरात, इससे कुछ हद तक इंसान जो है वो बहल जाता है। अल्लाह ताला कितना प्यारा अदब सिखा रहे हैं कि देखो अगर एक औरत को तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचा है, तुमने उसको पहले चूज़ किया, शादी की, फिर छोड़ दिया, तो अब आओ इसको कुछ दो। इसको मुताए तल्लाक कहते हैं, मुता फ़ायदा देना। इसी पे वो वाक्य आता है जो पीछे आपको मैंने सुनाया था, हज़रत हसन बिन अली का आता है कि अपनी एक बीवी को उन्होंने तलाक दी और उस तलाक के बाद तकरीबन 4,000 या 10,000 दिरहम का तोहफ़ा भेजा, एक बड़ी रकम थी, दिरहम चांदी का सिक्का होता है। तो जब वो उस औरत को मिला, इतनी बड़ी रकम को भी देख के उसने एक शेर पढ़ा जिसका खुलासा क्या था कि इतने प्यारे दोस्त के छुटने पर तो ये रकम बहुत थोड़ी है। तो जब ये जुमला उस औरत का उनके पास गया तो वो इतना रोए और कहने लगे अगर मैंने इसको मुकम्मल तौर पे ना तलाक दे दी होती तो मैं रजू कर लेता। तो लिहाजा फ़ायदा दो। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम किसी को छोड़ने के भी अदब सिखाता है। अब देखिए कि दीन इस्लाम जो है ना, ये मैनर्स का दीन है, एटिकेट्स का दीन है। कहीं आप आते हैं ना, आपको वहाँ आने के भी कुछ अदब होंगे, वहाँ से छोड़ते हैं ना उसके भी अदब होने चाहिए। इस्लाम ने जितने खूबसूरत अदब सिखाए थे, माजरत के साथ आज के मुसलमान उतने ही डिसऑर्गनाइज्ड हैं। ना हम कहीं आने की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं ना जाने की। शादियों के मौके पे वो दे देते हैं ससुराल को और लड़के को जो देने की इजाज़त क्या ज़रूरत ही नहीं, ख्वाह उनका दिमाग ख़राब करने वाली बातें। उस वक़्त दामाद को भी घड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, सास को भी कड़े पहन रहे हैं, सारे ख़ानदान के कपड़े बन के जा रहे हैं। एक लड़की है जिसकी शादी हुई, आप इमेजिन करें, एक माँ बाप हैं जिनकी 6 बेटियाँ, बिल्कुल सफ़ेद पोश कोई बाप है, कोई टीचर हो सकता है किसी जगह, कोई ड्राइवर हो सकता है, 6 बेटियों की उसने शादी करनी है। आपने उन 6 बेटियों में से भी पहली बेटी की शादी रचाई, चलिए अल्लाह ने जो दिया लिया था 20 जोड़े लड़की को उन्होंने बना दिए, और जब सूटकेस दूसरा खुलता है उसमें बाद 50-60 जोड़े होते हैं। ये किसके जोड़े हैं जी? इसमें 5 तो सास के हैं, 2-2, 3-3 नंदों के हैं, और ये 6 जोड़े लड़के की खालाओं के हैं, और ये 6 जोड़े लड़के की फूफियों के। सुना भाई ये बातें? पता नहीं आप लोगों की तो होते हैं कि नहीं, इधर नॉर्वे में आके शायद छुट गई हो ये जान, ये लड़के के फिर जोड़ों के। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मिसाल है कि फूफियों के जोड़े जा रहे हैं और उनके मियाँ के जा रहे हैं ना, तो एक फूफी है उनके मियाँ की डेथ हो चुकी है तो वो मुर्दा का भी लेती हैं, वो कहती हैं हमारे बेटे का लगाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं ऐसा ना किया करो, तुम लोगों के साथ ऐसे मामले करते हो, लोगों को तुम दुख देते हो, ये हदों से भरने वाली बात है। अब खुदा ना खास्ता एक हफ्ते, 10 दिन 15 दिन बाद शादी टूट गई, अब होता पता क्या है? लाओ वापस, स्टार्ट करो वापस, 2 पहले लड़के की घड़ी राडो की, वो सास के कड़े लाओ। वो कहती ना मैंने भी तो इस पे इतना लगाया था, मैं तो नहीं दे रही, मैं भी तो बरी में सजा के लेके गई थी। यानी ना हम रिश्ते जोड़ते वक्त में हदों पर रहते हैं, और जब तोड़ दें तो हम भी मत्ते हुन्ना करते हैं, मगर क्या इल्ज़ामात, ताने बातें ऐसी थी वैसी थी, इसने तो सोचा ही नहीं, इसकी तो पहले ही कई बातें लगी हुई थी। अच्छे मैनर से हो। आज आप देखिए कि वेस्टर्न स्टाइल में आपको क्या एटिकेट सीखते हैं। मसलन अगर वो कहीं जॉब करते हैं, आप उनको कहीं हायर करते हैं, या इवन कहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं, किसी के साथ कोई मामला करते हैं, उसके लिए भी वो पूरे प्रोटोकॉल से गुजरते हैं। टिकट जमा कराएं, आप देखें कितने स्टेप्स के बाद आपको टिकट मिलती है हाथ में, ये स्टेप वो। फिर आप कभी टिकट कैंसिल कराएं तो उसके भी कितने स्टेप्स हैं। कोई किसी जगह रिज़ाइन करता है, उसके भी टिकट्स हैं। आप घर लेते हैं लीज पे, किराए पे घर लिया, आपको उसके लिए कितना पेपर वर्क करवाते हैं, वो ये करें वो करें, अगर ये हो गया नुकसान, चोरी हो गई, ये तोड़ दिया वो कर दिया, और अगर आप छोड़ेंगे तो एक महीना नोटिस देंगे, अगर हमारा घर ना चढ़ा तो आप किराए पे लगाएंगे, फिर पैसे देंगे, कितने मैनर्स हैं। आज हम मुसलमानों का हाल क्या है, अपने हाथ के लिखे हुए को भी कोई अहमियत नहीं देते, और ख़ास तौर पे अगर वो बात दीन के साथ आ जाए फिर तो हम समझते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम। नहीं, इस्लाम कहता है रखो अच्छे तरीके से रखो, और छोड़ो तो अच्छे तरीके से छोड़ो। देखिए, किसी को छोड़ने का ये तो नहीं मतलब कि उससे सब कुछ ही छूट गया। अगर हम इस्लामी तरीके से निकाह करना और तलाक का मौका अगर खुदा नखास्ता आ जाए देना शुरू कर लें, आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा हमारे माशरों के अंदर अमन और चैन आ जाए, हमारी टेलीफोन टॉक कम हो जाए, मिनट्स कम लेने पड़े, अनलिमिटेड पैकेजेस की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर हम शादी मंगनी के मामले को बिल्कुल कुरान सुन्नत पे ले आए। होता क्या, किसी एक का रिश्ता अगर हो रहा हो घर में, ख़ानदान में, आप देखें पूरे घरों में बातें हो रही थी, उसको फ़ोन ये वो, फिर कई लोग ऐसे मैंने देखे शादी बच्चों की कर लेते हैं, मसलन दो भाई बहन है या दो बहनें हैं या दो भाई, अपने बेटे की नहीं शादी मंगनी कर दी, फिर क्या अभी दूसरों को नहीं बतानी, नहीं अभी नहीं बताना, लड़ाइयाँ पड़ जाएंगी। भाई क्या लड़ाई, नहीं वो दूसरी बहन कह रही है मेरे भी तो घर में बेटी है, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया, कि तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है। हाँ, फिर जब मंगनी किसी की खुदा ना सा टूटती, फिर देखे पूरा ख़ानदान मोशन पे आ जाता है, और शादी टूट जाए फिर तो अल्लाह की पना। इतना वक्त है हमारे पास, उम्मत मुस्लिमा इतनी फारिग नहीं होती, चूँकि हमारे पास वक्त ही बहुत है, काम तो कोई है नहीं, तो बैठ के बातें करते हैं। आप मुस्लिम सोसाइटी को देखें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ना किसी की शादी को इतना बड़ा इशू बनाया हुआ था जैसे हमारे दौर में। यानी आपको पता चल जाए कि आपके ख़ानदान के किसी शख्स ने शादी की बच्चों की, औरों को बुलाया आपको नहीं बुलाया, ज़रा सोचें हाल क्या होगा। हम कहेंगे अच्छा जी, अब हमारे बगैर शादी कर ली, और अल्लाह के नबी इतने प्यारे आपके सहाबी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक दिन आप गुजरते हुए उनको देखा तो उनके कपड़ों पे पीला रंग लगा हुआ कुछ देखा। ये उस दौर का रिवाज था अरबों में कि शादी किसी की होती थी तो उसके कपड़ों पे वो रंग लगा होता था, तो अल्लाह के नबी ने उनको देख के खुशी से कहा अब्दुर्रहमान आपने शादी की है, कहा जी अल्लाह के नबी। अब आप क्या कहते हैं, अच्छा जी हमारे बगैर ही कर ली, हमें बुलाया ही नहीं, हम तो मौलवी साहब थे। हाँ नहीं, आपने मुबारक दी और कहा कि आउलिम बिशातिन, अच्छा वलीमा कर लेना, चाहे तुम एक बकरी का करो। फिर आपने पूछा तुमने मेहर दिए, कहा जी अल्लाह के नबी एक खजूर की गुठली के बराबर सोने के वजन पे किया। कहा अच्छा ठीक है, चलो वलीमा भी कर लेना, ख़त्म, कोई गिला नहीं, कोई गुजारी नहीं। तलाक होती दूसरे को कानो कान ना ख़त्म पर होती, वो उसी की शादी फिर दूसरी औरत दूसरे मर्द से करवाने के लिए भी चल पड़ता कि इस औरत से शादी अगर करनी है किसी ने तो कर ले। ये होती है वो सोसाइटी जो मुस्लिम सोसाइटी है। लेकिन जब इसके बरक्स हम आपस में ऐसे मामलात करते हुए हदों से गुजर जाते हैं तो उसका नतीजा जो है वो बहुत ही गलत होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि आयत में आखिर में क्या कहा, हक्कन अलल मोहसिनीन, ये मोहसिनों का हक है। लड़के को इतना तंग ना करो कि वो थोड़े कमाई है उसकी और फिर भी वो तुम्हें ज़्यादा कोई पैसे दे, और ज़्यादा वाला है वो कम ना दे। ये वो सोसाइटी होती है जिसमें दिल साफ होते हैं। और इसके बरक्स अब आगे एक और केस डिस्कस किया जा रहा है आयत 237 में, वइन तल्लक्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, और अगर तुम इनको तलाक दो, कौन मर्द, मुसलमान मर्द, मुसलमान मर्दों औरतों को तलाक दें, किस सूरत में, इससे पहले कि तुमने उनको छुआ हो। यहाँ भी देखिए किनायतन, इशारतन ताल्लुक़ है जिस्मानी ताल्लुक की तरफ, ये नहीं कि हाथ नहीं लगना, मतलब ये कि रुख्सती नहीं हुई। क्या सूरत हुई कि तलाक दी इससे पहले कि तुम्हारी उससे ताल्लुक़ कायम हुआ, वक़्त फ़ौरत तुम लहुन फरीदा, और इससे पहले कि तुमने उनके लिए हक महर मुकर्रर किया था। ये आयतें, ये सारी आयत की डिस्क्रिप्शन आप उसमें देख चुके हैं पिछले जो हमने लेक्चर किया था डिस्क्रिप्शन में, कि अगर तलाक की सूरत में हो जबकि रुख्सती नहीं हुई तो फिर क्या होगा, लहुन फनिस्फ मा फरतुम, तो औरत को या लड़की को आधा हक महर मिलेगा। मसलन अगर किसी का हक महर 10,000 था, तलाक शादी हुई, निकाह हुआ सिर्फ, तलाक अभी रुख्सती नहीं हुई, उससे पहले तलाक हो गई, तो फिर औरत को 5,000 मिलेंगे। इल्ला अन याफू ना, हाँ अगर वो औरत वो भी माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने जब तुम्हारे मैं तुम्हारे घर ही नहीं आई तो मैंने पांच भी क्या करने, मैं पांच भी नहीं लेती, कोई हर्ज नहीं। और दूसरी सूरत औ याफू अल्लज़ी बियदिही, इसके नीचे लिखिए शौहर, याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, ये कौन है, डाउन एरो लिखिए, मर्द शौहर, यानी शौहर ही माफ़ कर दे कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आधा नहीं मैं पूरा ही दे देता हूँ, तो कहा कोई हर्ज की बात नहीं। वन ताफ़ु अक़रबुल तक़वा, और अगर नरमी से काम लो, मुआफ़ी से काम लो, दरगुजर से काम ले लो, तो ये तो तकवा के बहुत करीब है। ऐसे लग रहा है कि ज़ख्मों को भरने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह सुब्हान तआला इन आयतों में ये सिखा रहे हैं कि वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, और आपस में फ़ज़ल को भूला ना करो। शादी के मौके पे तो खूब फ़याज हो जाते हो, खूब जोड़े बांटते हो, जेवरात बांटते हो, तो जब डिवोर्स होती है या ताल्लुक़ टूटते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फिर फ़ज़ल करते हुए, उस पर एहसान करते हुए गलती ना करो। इन्नल्लाहा बिमा तअमलूना बसीर, अल्लाह ताला जो कुछ कर रहा है, जो कहता है, वो तुम उसको खूब अच्छी तरह जानते हो। यहाँ पर आप देखिए कि अब तलाक़ इद्दत के मसाइल पूरे हुए, हालांकि आगे टॉपिक चल रहा है इद्दत का, थोड़ा सा एक और एंगल से बात आएगी, लेकिन यहाँ पे आप ख़ुलासा देख सकते हैं कि अगर औरत की रुख्सती नहीं हुई, हक महर मुकर्रर था, शादी से मतलब उससे पहले ही तलाक हो गई तो औरत आधा लेगी। अगर मर्द लड़की की का निकाह हुआ, मिसाल है कि खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो कि यहाँ रहते हुए निकाह हो गया किसी लड़के से पाकिस्तान में, उसी दौरान लड़का मर गया, तो फिर औरत पूरी इद्दत करेगी, यानी फिर उसका इद्दत के साथ ताल्लुक़ है। और ये चारों चीज़ें आप निकाह की फॉर्म्स देख सकते हैं, इद्दत के हिसाब से और तलाक़ के हिसाब से इसको पीछे हम उस अपने में कर सकें। अब आप देखिए कि जब ये बातें हो रही हैं, एन बीच में बात आ रही है हाफिज़ अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, और नमाजों की निगाह, अपनी नमाजों की निगहदाश्त करो, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की, वकूमु लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के आगे फरमाबरदार खड़े हो जाओ। ये क्या बात हुई, बात हो रही है तलाक़ की, इद्दत की, निकाह की, अगली आयत फिर उसी से है, लेकिन ऐन बीच में नमाज के लिए एक आयत आ गई। क्या ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स बात है? नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स नहीं है। वजह क्या है कि जब घरों में ऐसे इशूज़ उठते हैं ना, सबसे ज़्यादा नमाजें मुतासर होती हैं। सारी सारी रात पार्टीज़ बैठी हुई हैं, कोई सुलह करा रहा है, कोई बातें चीतें, और सोए और फजर चली गई। फिर दूसरी सूरत इसमें नमाज की बात करके अल्लाह ताला ने ये तक बता दिया कि बाज़ दफ़ा बड़ा ही झगड़ा बढ़ चुका होता है, इतने में मौज़िन बोलता है हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, तो जब उठेंगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तीसरी वजह नमाज का तस्करा बीच में आने की क्या है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो इंसान स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, वज़ू करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, रिलैक्स होंगे, टेंशन रिलीज होगा। फिर आमनुस्तईन बिसब्र वस्सलात, पीछे हम पढ़ चुके कैसे दुख में जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला की मदद भी आती है, सब्र भी मिलता है, सहारा भी मिलता है। फिर दूसरी बात है कि हाफिज़ से क्या मुराद है, यानी अपनी नमाजों की हिफाजत करो। तो नंबर एक, नमाजों को वक्त पर पढ़ो, प्रे ऑन टाइम। अपने आप को पूछें, करती हूँ हिफाजत नमाजों की? दूसरी बात, क्लीनलीनेस, तहारत की हालत में नमाज पढ़ो, वज़ू कर रहे हो, देखो नाखून तो नहीं सूखे रह गए। अगर आपने नाखूनों पे कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई है जो पानी को नहीं जाने दे रही, आपका वज़ू कैसे होगा और आपकी नमाज कैसे होगी? फिर तीसरी चीज़ है, किबले की तरफ रुख करो, ये नहीं कि जिधर दिल चाहे मुँह करके नमाज पढ़ने लग जाओ। फिर अगली बात है कि नमाज के जो एक्शंस हैं, क़याम, रुकू, सजदा, ठीक तरह से करो। नबी सल्लम ने किसी को देखा तो वो नमाज़ पढ़ रहे और पूरा भी कमर सीधी भी नहीं होती तो खड़े हो गए, अभी पूरे सीधे भी नहीं हुए तो सजदे में आ गए। तो आपने फरमाया कि बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है, जो बंदा रुकू और सजूद में चोरी कर ले। खुलासा है बात का, नमाज पढ़े स्ट्रेट, रुकू में जाएं पूरा झुके से, फिर सीधे आए, हर रुकन एक एक्शन, यानी आप खड़े हैं ना, आप रुकू में, ये डिफरेंट फॉर्म है ना, एक एक्शन से दूसरे एक्शन के बीच में पॉजेस होने चाहिए। ये नहीं कि आप देखें आप ये खड़े थे यूँ फौरन खड़े, बात ऐसे मक्खी मारने की तरह झुकते हैं और खड़े होते हैं, दुरुस्त नहीं है। रुकू और क्याम और इसी तरह दो सजदों के बीच में सुकून होना चाहिए, हिफाजत करो, अच्छी पढ़ो। फिर अगला क्वेश्चन है कि सलातिल वुस्ता से यहाँ कौन सी नमाज मुराद है, मिडल प्रेयर कौन सी है? तो इसमें बहुत सारी राय को जमा करें। जब नबी सल्लम की हदीस से ग़ज़वा खंदक के मौके पर आपने फरमाया कि अल्लाह उन काफिरों के घरों को आग से भर दे जिन्होंने हमें सलातुल वुस्ता से रोक दिया। और वो कौन सी नमाज आपकी, आप इतने मगन हुए खंदक खोदने में कि असर की नमाज चली गई, बिल्कुल सूरज डूबने के करीब हुआ तब आपको और सहाबा को याद आया। तो वो वहाँ से भी, और आप देखें तो असर की नमाज मिडल आ जाती है ना, फजर और जोहर इधर, ईशा और मगरब उधर, तो मिडल में असर है, तो सलातुल वुस्ता असर की नमाज है। सारी ही नमाज़ों की बहुत अहमियत है लेकिन असर की नमाज के बारे में ख़ास तौर पे अहादीस आती हैं। एक हदीस का ख़ुलासा है कि जिसकी नमाज वुस्ता फौत हो गई यानी असर की नमाज चली गई, गोया कि वो ऐसा है जैसे उसका घर, उसके बच्चे सब कुछ लुट गया। आप सोचें ज़रा, किसी के हादसे में उसके घर, बच्चे, उसके बीवी, उसकी सारी चीज़ों का खात्मा हो जाए तो क्या लोग उसके बारे में बोलेंगे। हम सोचें अपने बारे में कि हमारी कितनी नमाजें जाती हैं, और जो हम फौत करके रात को पढ़ने की या उस मुर्दे को ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं तो वो कोई ज़िंदा थोड़ी हो जाता है मुर्दा। एक कुछ आलिम थे तो उनके बच्ची का शायद इंतकाल हुआ तो लोग उनके पास अफसोस की नियत से आए तो कहने लगे कि फ़लां दिन मेरी असर की नमाज़ छुट गई थी, मेरे पास तो कोई अफसोस करने नहीं आया, और आज मेरी सिर्फ एक बच्ची की डेथ हुई तो सारे अफसोस कर रहे हैं। सोचने की बात है, हम भी अपनी नमाज़ों पे गौर करें। हमारा कुरान की क्लास में कब दिल लगेगा, हमें कब यहाँ आना आसान लगेगा, अगर 10 बजे भी आ रहे हैं तो कब आसान लगेगा, जब हम 5-6 बजे फजर के लिए उठने के आदि हो चुके होंगे। आप आजमा के देख लें, मुझे तो यहाँ बैठे पता चल जाता है क्योंकि चेहरे दिखते हैं ना, जो बच्चे वक्त पे सुबह नमाज नहीं पढ़ते ना पूरी क्लास में वो यौन करते हैं, झुके हुए, टूटे टूटे, गिरे गिरे, और जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश लुकिंग दिखते हैं तो कम दिल में खुद ब खुद आने लगता है कि इन्होंने नमाज वक्त पर पढ़ी होगी। तब कम अज़ कम नमाजों को हमें अपनी चीज़ करना है क्योंकि नमाज पहली चीज़ है। हदीस में आता है कि अव्वलुमा युहासबु बिही यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस अमल का हिसाब होगा वो नमाज है। नमाज ठीक हुई आगे भी आसानियाँ हो जाएंगी, और नमाज ठीक नहीं तो क्या हुआ, मुश्किल लगती है हमें नमाज। किसी दोस्त से मिलने जाना हो तो कैसा लगता है, किसी फ्रेंड से मिलना हो कितना अच्छा लगता है, अल्लाह से मिलना कब अच्छा लगेगा, जब अल्लाह से मोहब्बत होगी। हमें किसी को एयरपोर्ट से पिक करने जाना हो, रात को नींद ही नहीं आएगी, 3 बजे उठ के चल पड़ेंगे एयरपोर्ट के, चलो शायद जहाज़ पहले ही ना आ जाए, 2 घंटे, 2-2 घंटे क्याम में खड़े रहते हैं रुकू हम एयरपोर्ट्स पे लोगों के इंतज़ार में, और नमाज के लिए मुड़ते ही नहीं। इस पर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, एक पूरा आर्टिकल है कि फजर की नमाज़ के लिए कैसे उठें। क्या आपको लगता है कि फजर ही सबसे मुश्किल होती है, लेकिन चूंकि यहाँ तो असर की बात है ना, तो असर की किस किस को मुश्किल लगती है? अमूमन मेरा हाल है जो लोग कॉलेज, स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटीज़, उनको मुश्किल लगती होगी थके हुए आए या जाना, या इस वक्त जो होता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो आज कम से कम फजर असर की नमाज़ के लिए ज़रूर नियत करें। कितने लोग नियत करते हैं कि मैं इस नमाज़ को बिल्कुल रिले नहीं करूँगी? आपको तक हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि मुनाफिक की अलामत है कि वो बैठा रहता है, बैठा रहता है, असर के वक्त भी हो गया बैठा बैठा, और जो ही सूरज शैतान के दो सींगों के बीच में आता है तो फौरन खड़ा होता है और 2 ठोंगे मार के आ जाता है, यानी लेट असर पड़ता है। असर की ख़ास तौर पे बात है, और अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ तफरकाबाजी ने, फ़िरकेबाजी ने लोगों को इतना, जिसको कहते हैं अंधा बहरा कर दिया, कि लोग अजानें सुन रहे होते हैं कहते हैं नहीं जी भी हमारी मस्जिद की नहीं हुई, हमारी अभी 1 घंटे बाद होनी है, और सबसे ज़्यादा लोग असर की नमाज़ पे करते हैं। हालांकि असर की नमाज उन नमाज़ों में कि जिसको फौरन अव्वल वक्त पे पढ़ना चाहिए। आप जोहर ठंडी करके पढ़ें कोई हरज नहीं, 1 बजे नमाज हुई आप 1:30 बजे पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 2:30 पढ़ लें, कोई हरज की बात नहीं। असर के लिए बेस्ट थिंग यह कि अभी आसान हुई आप नमाज पढ़ लें, और आप फौरन पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको पढ़ना भी आसान होगा। फिर आम दिनों में तो नमाज पढ़नी से पढ़नी थी, इससे भी बढ़ के आप देखिए कि अगली चीज़ जो है वो क्या है, आयत नंबर 239, फ़ाइन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, बदअमनी की हालत हो तो ख्वाह पैदल हो या सवार हो, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो। फ़ाइज़ा अमिन तुम फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून, हाँ फिर जब अमन मुयस्सर आ जाए तो अल्लाह को उस तरह याद करो जिस तरह के तुम अल्लाह जिस तरह के उसने तुमको सिखाया जिससे पहले तुम ना वाकिफ थे। यहाँ है सलातुल खौफ का सिर्फ इशारा। आप देखिए कि नमाज इतनी अहम है कि जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ सकते। सूरत निसा में इसकी डिटेल आएगी कि जंग सामने दुश्मन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम इधर हैं, असर जोहर का वक्त आया, صحابہ کرام صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ لی، بعد میں کفار کے دل میں شیطان نے ڈالا، ارے تم نے کیا کیا، اتنا اچھا موقع ملا تھا، یہ سارے اکٹھے جماعت کر رہے تھے، پیچھے سے آتے حملہ کر دیتے، مار دیتے. کہنے کہ واقعی ہم نے تو بہت بڑا چانس نکال دیا. کہا کوئی بات نہیں، کسی ایک نے کا فکر نہ کرو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کی ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے، اشارہ تھا سر کی نماز کی طرح، ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو ان کو اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں سب سے زیادہ پیاری ہے. یہ پیچھے پلاننگز کر رہے ہیں وہ لوگ، یعنی ابھی عصر کے لیے بھی تو جماعت کریں گے نا، تو ہم اس وقت پیچھے سے حملہ کریں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے. انہوں نے تو وہ سوچا، اللہ نے آیت نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ نے سب نے اکٹھے نہیں پڑھنی، بلکہ صلاۃ الخوف کا طریقہ سورۃ نساء میں آئے گا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ نہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ، کوئی خوف ہے، کوئی بد امنی ہے، دشمن کا خطرہ ہے، کوئی دشمن ایسا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے پلان کر رہا ہے، تو فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پھر سواریوں پہ بھی پڑھ لو، پھر کھڑے بھی پڑھ لو. یہ میدان جنگ کی باتیں میری اور آپ کی نہیں ہیں، کیونکہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور واقعی صحابہ کرام نے گھوڑوں پہ بھی نمازیں پڑھی ہیں. صلاۃ الخوف میں تو بعض دفعہ چار رکعت کے بجائے دو رکعت، اور بعض جگہ صرف ایک رکعت بھی پڑھی جاتی ہے. کبھی غور کریں وجہ کیا. دیکھیے، پانچ وقت نماز پڑھنے کا مطلب پانچ دفعہ رول کال لگانا ہے کہ او اللہ، اسٹل آئی ایم مسلم، اسٹل آئی ایم مسلم، اسٹل آئی ایم یور سلیو، اللہ ابھی بھی میں مسلمان ہوں، ابھی بھی میں آپ کا بندہ ہوں. اور جو یہ پانچ رول کال سائن ان سائن آؤٹ نہ کرے اور رات کو جا کے پانچوں کٹھی پڑھ لے تو وہ تو کھیل ہی ہے نا، مذاق کی بات ہے نا. ہم نمازوں کو اہمیت دیں، میدان جنگ میں نہیں چھوڑ سکتے تو ہم، آج لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اول تو پڑھتی نہیں نماز، حالانکہ نہ خوف کی حالت ہے، وہ کتنی بڑی گھبرائی بھی ہے، اور پڑھتی بھی بیچاری تو صلاۃ الخوف والی پڑھ رہی ہوتی ہیں، وضو کیسے کروں، میک اپ اتر جائے گا، پھر اشاروں سے، اور یوں جیسے وہ کہتے ہیں نا چھوئی موئی بن کے، اس دن لڑکیاں سمجھتی ہیں پتہ نہیں آج ہمیں ہو کیا گیا. ہاں نہیں، نماز ہر جہاں آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے وہاں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اب اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے نا 240، یہ متروک آیت ہے، منسوخ. پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا ناسخ اور منسوخ کا تذکرہ، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو پہلے حکم ان پہ چلتا تھا بعد میں نہیں. بیوگی کی عدت اسلام سے پہلے ایک سال تھی، انتہائی تکلیف دہ حالات کرتے تھے عورت کے. میں پہلے آیت پڑھ لوں پھر آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن دیتی ہوں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجم وصیت لازواجکم متان الی الحول غیر اخراج. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں گی، لیکن ایک سال کے بعد فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں گی، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ ہے وہ آیت جو پچھلی آیت، جو آج ہمارے سبق کی پہلی آیت تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا، 4 ماہ اور 10 دن. اب جس بندے کو یہ فرق ہی نہیں پتا کہ یہ آیت پہلے کی ہے وہ بعد کی ہے، تو وہ غلطی کرے گا نا. لوگ آپ کو دکھائیں گے، دیکھیں آپ کے قرآن میں کتنا کانٹرڈکشن ہے. ایک آیت میں کہہ رہے ہیں کہ عورت ہسبینڈ فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن انتظار کرے، اور دیکھو اسی کے 3-4 آیتوں کے بعد اس میں بتایا جا رہا ہے جی 1 سال رکے. اس لیے جس بندے کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے وہ تفسیر نہیں کرا سکتا. لوگ آدھے علم کے ساتھ جب قرآن پڑھاتے ہیں نا، بعض دفعہ مزید کنفیوژن دیتے ہیں. یہ آیت اس کی بہترین دلیل ہے. آپ اس آیت کے نیچے لکھیں گے کہ آج یہ حکم پوسٹ پونڈ ہے، ختم ہے، اب اسلام نے روک دیا، یہ آیت منسوخ ہے. اور آیت نمبر 234 جو ہم نے آج پڑھی پہلی اپنے لیسن میں، وہ ہے اس کی ناسخ آیت. ناسخ وہ آیت ہوتی ہے جو بعد میں اترتی ہے، اور منسوخ ہوتی ہے جو ختم ہو گئی، یعنی اس کے آرڈر اب کینسل ہو گئے. پہلے آپ ایسے سمجھیں نا کہ جیسے کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی لا بناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی 2 سواریاں منع ہیں. اپنے ملکوں میں آپ سوچیں کہ آج کے حالات کے مطابق ایک موٹر سائیکل پہ 2 لوگ نہیں رہ سکتے، بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے. پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایسے ہوتے ہیں نا. آپ اس کو اس طرح آسانی سے سمجھ لیں کہ جیسے آپ صبح کسی کو کہتے ہیں، اپنے شوہر کو کہتے ہیں، اچھا جا رہے ہیں، یہ 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 لے آئیے گا، एक मतलब मिसाल है कि दो दो किलो आप दाल ले आइए, गोश्त लें, कुछ भी कह दें, फिर बाद में आप एक फ़ोन करते हैं, आप कहते हैं नहीं इतना ना लाएं, ऐसा करें आधा आधा किलो ले आए, तो आपने क्या किया, आपने सुबह वाले ऑर्डर को कैंसिल कर दिया ना, बाद वाला आपका अप टू डेट हो गया। अब हो सकता है दोनों पर्चियाँ आपके शौहर के पास मौजूद हों, या किसी को आपने लिख के बोला या लिख के कहा या बोला। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को तदरीजन हुक्म दिए। नबी सल्लम जिस मुआशरे में आए, उस मुआशरे में औरत बड़ी पिसी हुई थी, मजलूम थी, दुखी थी, उसके हकूक़ जानवरों की तरह पामाल होते थे। तरीक़ाकार क्या था, आप ज़रा सुनिए और इस्लाम के लिए दिल में खुशी महसूस करें कि उसने हमें कितनी इज़्ज़त दी। पीछे आप पढ़ चुके कि 4 माह 10 दिन भी कितनी इज़्ज़त के साथ औरत को रखा जाएगा। इसके बरक्स वो लोग क्या करते थे, जब किसी का शौहर फौत होता, उस औरत को जानवरों के डरबे के साथ बंद कर देते, यानी परिंदों, जानवरों, गंदगी जहाँ घोड़े हैं, अस्तबल है, वहाँ औरत को छोड़ते। 1 साल तक उस औरत को नहाने की इजाज़त नहीं थी, और उसको बिल्कुल ऐसे जैसे खाने को चीज़ें देते हैं जैसे जानवर को देते हैं। 1 साल जब पूरा होता, फिर जानवर जैसे बकरी की मेंगनियाँ होती हैं ना, जो उसकी गंदगी फौसला है, वो ले लेके अपने सर के ऊपर से फेंकती। फिर एक उनकी रस्म या रिवाज क्या थी कि परिंदा लेते कोई भी, और उस औरत को कहते कि अपने जिस्म से मलो। कहते हैं कि वो औरत इतनी बदबूदार हो चुकी होती थी कि वो परिंदा औरत के जिस्म से मस करने और उसकी बदबू की वजह से मर जाता था। आप कहेंगे हाय कैसे अहमक थे, तो क्या आज रस्मों के नाम पे हमारी भी ऐसी बेकार किस्म की रस्में नहीं? ये उनके कस्टम्स थे, उनकी रस्में थी। इस्लाम ने कहा औरत औरत है, कोई जानवर नहीं है, अब ख़त्म। अब 4 माह 10 दिन अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ रहो, इसके बाद वो रहें वो ना रहें, अगली आयत बिल्कुल वही है जो पीछे हम कर चुके, कि इसके बाद अब औरत की कोई भी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर नहीं है। और अल्लाह ताला ने यही हुक्म बयान कर दिया, वलिल मुतल्लकात मताउ बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तकीन। आप कह लें कि ये आखिरी कील ठुक रहे हैं तलाक और इद्दत के मसाइल में, बार बार तकरार है, देखो जिन औरतों को तलाक दी है उनको कुछ ना कुछ दो, मुनासिब तरीके से दो, ये हक के मुत्तकियों का। और फिर आखिरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, इस तरह अल्लाह ताला अपने अहकामात तुम्हें साफ साफ बता रहा है। क्यों भाई? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ बूझ से काम लो, समझो इन आयतों को। हम कहते हैं अल्लाह तुम्हें ये कुरान की आयतें दे रहा है ताकि तुम इनको चूमो, इनके तावीज़ बना के पहनो, इनको बेटियों के सरों पे रखो रुख्सती के वक्त। क्या पता चला कि कुरान अमल के लिए आया है, समझो फिर इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, अमल करो। हम इन आयतों के तावीज़ बना के गले में डाल लें, मिसाल है जितनी आयतें आज की थी, और कह दें ये तावीज़ पहनने वाली औरतें तलाक से बची रहेंगी, डज इट मेक एनी सेंस? बनती? आप इसको इस तरह समझें कि एक मरीज़ है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, नुस्खा जिसको बोलते हैं, एस्प्रिन और फुलां फुलां फुलां। क्या करना चाहिए उस आदमी को? जाके मेडिकल स्टोर से वो दवा ले, फिर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक खाए, सुबह खाए, शाम खाए, खाने वाली खाए, पीने वाली पिए, कोई मरहम है तो उसको मल ले, ठीक हो जाएगा। अब कोई शख्स कहे नहीं ये क्या बात है, डॉक्टर साहब ने नुस्खा दिया, घर आए उसको बड़े प्यार से फोल्ड करे, फिर चांदी के केस में डाले और गले में पहन ले, और साथ ही ये सोचे कि ये नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन पहन लूँगी ना गले में तो देखता मेरा बुखार उतर जाएगा। डज इट मेक एनी सेंस? नहीं समझ आती ना। वो कहे कि इसको मैं अपने इस नुस्खे को खूबसूरत कागज़ में फ्रेम में लगा के दीवार पे अपने बेड के सामने लगा लेता हूँ तो मेरा बुखार चला जाएगा, जाना चाहिए? जाता? वो कहे कि मैं इस नुस्खे को ले कर सर के ऊपर रखता हूँ फेरता हूँ, जितनी मर्जी मिसालें ले ले कोई सेंस ही नहीं बनती। लेकिन अफसोस की बात है, अल्लाह कहते हैं जो आयतें मैंने तुम्हें दी, लअल्लकुम ताक़िलून, अक़ल करो, समझो, गौर करो, अमल करो, हमने उनको कर दिया बंद गिलाफों में। अरबी हमें समझ नहीं आती, पढ़ते भी हैं तो सही एक्सेंट नहीं है, और उसके बाद इसकी बरकत समेटना चाहते हैं बंद। याद रखिए आज उम्मत मुस्लिमा के कितने ही ऐसे लोग हैं जो बंद किताब की बड़ी इज्जत करते हैं, इसको ऊंचा रखो, नीचे ना रखो, ये ना करो, इसको पीछा ना करो, इसको पुश ना करो, गिर जाए तो इसके वज़न का आटा पे तोल के दो, और जब किताब खुलती है तो बेचैन होने लगते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन अहकामात को सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि हमने अब सूरत बकरा का वो हिस्सा पढ़ लिया कि जिस पर अगर अमल किया जाए तो ना सिर्फ ये कि हमारी माशरत यानी हमारी اجتماعی زندگیاں خوبصورت ہو سکتی ہیں بلکہ انفرادی زندگیاں بھی. اب اس سے آگے آخری جو ہمارے پاس دو واقعات, اب اگلا جو ہمارا کل کی لیسن ہے, یہ دو سٹوریز ہیں, بہت ہی یعنی اس میں ہمارے لیے بڑے خوبصورت میسیج ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر تیسرے پارے میں تو آپ کو اور بھی بہت کچھ ملے گا جس میں سے آیت الکرسی بھی ہے. کوئی بات جو آج کے لیسن میں سے ذہن میں آئی ہو تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ لوگ. جی, آپ کی بات میں نے سن لی اور میں آپ کا سوال بھی سمجھ گئی. پہلی بات ہے کہ عدت میں بیٹھتے نہیں ہیں, عدت تو ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں جو ایک ہم نے اوور بوجھ ڈال دیا نا عدت میں, مثال ہے یہی جو باتیں ابھی ذکر ہوئی تھیں کہ عورتیں سارے مردوں سے پردہ کرتی ہیں, پھر ایکسٹرا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں, کھانے پکا کے بانٹتی ہیں. عدت از عدت. اب مثال ہے کہ وہ, اور دوسرا آپ نے کہا کہ 60 سے اوپر کی تھی, تو اب 60 سے اوپر کی عورت تو ویسے ہی خود کو بوڑھا سمجھتی ہے نا, تو اس کے لیے عدت تو ایسے ہی ہے کہ جیسے عام عورتیں بعد میں بھی رہتی ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا, یہ ایک صرف ٹریڈیشن ہے ہماری, ورنہ ان سے پوچھے نہ پوچھے جیسی نارمل زندگی دوسری عورتیں گزارتی ہیں وہ بھی گزار سکتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے 3 ماہ کے اندر شادی بھی کی ہوگی یا کرنی ہوگی آگے سے, تو لہٰذا اس عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, جوانی میں پہننے اوڑھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے, اس لیے ذرا مشکل لگتی ہے لوگوں کو عدت, جب بڑھاپے میں نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. جی, آپ کا سوال کہ ایک عورت جو اپنی زندگی میں شوہر سے بڑی تنگ بھی آئی ہوئی تھی اور وہ اس کو دکھ دیتا تھا, تو کیا وہ بھی عدت کرے حالانکہ وہ تو خوش ہوگی اندر سے کہ جان چھٹی. دیکھیے کہ شوہر ہو, لڑے مارے کوٹے, وہ اس سے بہتر ہے کہ شوہر نہ رہے. ٹھیک ہے, جب مرد نہیں رہتے نا تو پھر ان کی, پھر اپنے اوپر ہی عورتوں کو گلٹ آتا ہے کہ ہائے میں نے اس کو خوش نہیں رکھا. اور اگر بالفرض وہ دکھ دیتے تھے تو 3 مہینے 4 مہینے اور مزید اپنے آپ کو اس دکھ میں رکھے گی نا, تو اس کے نام لے کے یہ کہ بھی اب دوبارہ فوراً شادی کر لے یا دوسری چیزوں میں پڑے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں کہ شوہر سے آپ کو پیار کتنا تھا, عدت کا اس سے تعلق نہیں ہے. جی, ان کا سوال ہے کہ عورت کو ایک جگہ سے طلاق ہوئی, پھر اس کا بچہ تھا, پھر اس عورت نے دوسری جگہ شادی کی, تو اگر اس بچے کا دودھ چھڑانا ہے تو کیا پہلے شوہر سے مشورہ کرے گی کہ دوسرے سے کرے گی؟ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں قرآن میں جو ٹیکسٹ ہے وہ پہلے شوہر کے ساتھ ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا شوہر اتنے اچھے دل کا مل جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم ساتھ اپنا بچہ بھی پالو اور اس کو دودھ بھی پلا لو, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ اس بچے کو اس کے ساتھ سٹل رکھ سکتی ہے. پھر اگر اس کے شوہر کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو پھر وہ پہلے شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ میرے اب حالات وہ نہیں رہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں, تو لہٰذا پھر وہ کسی دوسری عورت سے پلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت عدت میں ہے اور خاندان میں کوئی قریبی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا وہ عورت وہاں جا سکتی ہے؟ دیکھیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے انسان اپنے دل سے اور اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. جنرل قانون اسلام نے بتا دیے کہ بہت بڑی ضرورت ہو کہ عورت اس کے ساتھ ادھر نکلے, جیسے کوئی پڑھتی ہے پڑھاتی ہے, کوئی ایسا کام ہے جو نماز سے ہے یا اس کے کمانے کا کوئی ذریعہ ہے. اب خدا ناس اس کے باپ کی ڈیتھ ہے یا بھائی کی ہے یا کوئی ایسا ہے, تو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلی جائے, لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے کہ جی نہ گئے تو لوگ باتیں کریں گے, یعنی رسمن نہ جائے. اگر اس کو واقعی فیل ہوتا ہے تو نہ کرے. اس پہ ایک چھوٹی سی بات آپ سب کی لیے کر دوں, آپ کو فائدہ ہوگا. ہم نے یہ جتنے بھی مسئلے پڑھے ہیں اس میں یقیناً سوال اٹھتے ہی رہیں گے, اور آپ پوچھیں گے بھی تو فوراً آپ کو اتنوں کو جواب سمجھ نہیں آئیں گے. بیسٹ تھنگ یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس قسم کا سوال ہو تو ایک ویب سائٹ ہے, لکھ لیں اسلام کیو اے, ایک ہی لفظ ہے, ISLAM QA, کیو میں نے کوشچن, اے میں نے آنسر .com. اس پہ جائیں, بہت ساری لینگویجز ہیں جس میں انگلش بھی ہے اردو بھی ہے, چوز کریں, اسپیسیفک ٹاپک پہ جاتے جائیں, سوال لوگوں کے اور اس کے جواب لکھے ہوئے آپ کے سامنے آ جائیں گے, آپ ایک مسئلے کے سارے ڈفرینٹ اینگل سمجھ لیں گے. ایون اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو انہوں نے وہاں جگہ بنائی ہوتی ہے, آپ وہاں کلک کر کے اپنا سوال لکھ کے سینڈ کر دیں, پھر کچھ دن کے بعد وہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. تو بیسٹ تھنگ ہے کہ آپ اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے, ایک بک بھی بتائی تھی منہاج المسلمین لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی تھی, اس میں بھی یہ ٹاپکس کافی ڈیٹیلز کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.